नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी योजनाओं के 100% कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया। इसे वास्तविक सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का आधार बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए भारतीय वंशियों के विशिष्ट सदस्यों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार मजबूत रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए परिवर्तनकारी नीतिगत सुधार कर रही है। भारत का औद्योगिक उत्पादन नवम्बर में 6 महीने के उच्चतम स्तर 5.2% पर पहुंचा, अक्टूबर में ये 3.5% था। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। और महिला क्रिकेट में भारत ने राजकोट में 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में आयरलैंड को 6 विकेट से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी योजनाओं का 100% लाभ लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सही सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के लिए ऐसा करना अनिवार्य है। श्री मोदी ने ये विचार प्रमुख उद्यमी निखिल कामत को दिए एक साक्षात्कार में व्यक्त किए। श्री मोदी ने सोशल मीडिया, UPI और तकनीक के महत्व को उजागर करते हुए कहा कि ये लोकतंत्र और इसके सशक्तिकरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है।
आज मैं 30 सेकंड में 10 करोड़ किसानों के खाते में सीधे पैसे भेज सकता। मैं आज देश के 13 करोड़ गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं को सब्सिडी के पैसे एक क्लिक से 30 सेकंड में भेज सकता। क्यों? जनधन अकाउंट किसी को लगे कब होता, लेकिन देश के करोड़ों रुपये जो लीकेज होता था, जो भ्रष्टाचार होता था, वो गया और टेक्नोलॉजी का एक उपयोग हुआ।
वर्तमान चुनौतियों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व भारत पर इसलिए भरोसा करता है कि उसका दृष्टिकोण निष्पक्ष है। श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा वैश्विक संकट के दौरान भारत ने बार बार ये कहा है कि वो शांति के पक्ष में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि प्रवासी भारतीय वैश्विक समुदाय के सामने भारत की सही तस्वीर पेश करते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू भुवनेश्वर में जनता मैदान में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रवासियों ने चिकित्सा और प्रौद्योगिकी सहित सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
प्रवासी भारतीय दिवस ओवर द इयर्स बिकम मोर देन जस्ट एन इवेंट। इट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर आइडियाज कन्वर्ज, कोलैबोरेशंस आर फोर्ज्ड एंड द बॉन्ड्स बिटवीन इंडिया एंड इट्स डायस्पोरा आर स्ट्रेंथेंड।
राष्ट्रपति ने अपने संबोधन से पहले विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए भारतीय प्रवासियों के प्रतिष्ठित सदस्यों को प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने विकसित भारत के संकल्प को दोहराया।
आवर विजन फॉर विकसित भारत अलाइंस विद आवर ग्रोइंग स्टेज ऑन द वर्ल्ड स्टेज, पर्टिकुलरली एज ए लीडिंग वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। This vision is about creating an ecosystem that not only meets our needs but also contributes to global well-being.
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जुएल ओराम, धर्मेंद्र प्रधान, ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंबमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार सशक्त रक्षा औद्योगिक तंत्र के निर्माण के लिए सुधारात्मक नीति बना रही है। इसका उद्देश्य आत्मनिर्भर प्रौद्योगिकी स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देना है। एयरो इंडिया 2025 से पहले आज नई दिल्ली में राजदूतों के साथ गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा और वायु क्षेत्रों में राष्ट्र की प्रगति का उल्लेख करते हुए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के सफलतापूर्वक विकास पर बल दिया। देश में प्रगतिशील वैश्विक सुरक्षित वातावरण का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने शांति और खुशहाली के लिए सामूहिक कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया।
इट इज थस ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस दैट द लाइक माइंडेड कंट्रीज शुड स्ट्राइव टुगेदर फॉर कलेक्टिव एक्शन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। विदाउट दिस आवर फ्यूचर जनरेशंस विल नॉट बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग इन टुडेज़ एरा।
रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत उन चुनिंदा राष्ट्रों में शामिल है जो लड़ाकू विमान, परमाणु पनडुब्बी, विशेष प्रकार के युद्धक टैंक और अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के निर्माण और उत्पादन में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जो विदेशी कंपनियां भारत में कारोबार शुरू करना और भागीदार बनना चाहती हैं, उनके लिए वायु क्षेत्र और रक्षा क्षेत्र में अनेक अवसर उपलब्ध हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत का औद्योगिक उत्पादन नवंबर में 6 महीने के उच्चतम स्तर 5.2% पर पहुंच गया, जो अक्टूबर में 3.5% था।
आंकड़ों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के 3 प्रमुख घटकों में से विनिर्माण उत्पादन नवंबर में 5.8% बढ़ गया, जबकि बिजली उत्पादन में 4.4% और खनन गतिविधियों में 1.9% की वृद्धि हुई। नवंबर 2023 की तुलना में नवंबर 2024 में उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार IIP की वृद्धि दर प्राथमिक वस्तुओं में 2.7%, पूंजीगत वस्तुओं में 9%, मध्यवर्ती वस्तुओं में 5%, बुनियादी ढांचे या निर्माण वस्तुओं में 10% और उपभोक्ता में 13.1% रही। टिकाऊ और गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में 0.6% वृद्धि हुई। आयुषी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची प्रिया।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि स्पेस डॉकिंग यानी 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में जोड़ने के प्रयोग की तारीख कुछ दिन में तय की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि जनवरी के अंत में निर्धारित नाविक इसरो द्वारा 100वां उपग्रह प्रक्षेपण होगा।
The current integration activity going on in SDSC, there are 3 launches are getting prepared. The first launch is for the GSLV with a NAVIC second series in the revised series of NAVIC 02. This is going to be the 100th launch, I suppose, if everything goes well. This is scheduled by the end of January.
ये साक्षात्कार आज रात 9:15 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 101.1 MHz पर प्रसारित होगा। दिल्ली में आज चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ ही 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन के पहले दिन विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से 9 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए। इस महीने की 17 तारीख तक पर्चे दाखिल किए जा सकते हैं। इस बीच विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने क्षेत्रों में प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंतर्गत पार्टी उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नई दिल्ली में हो रही है। पार्टी मुख्यालय में हो रही इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ साथ दिल्ली भाजपा के नेता भी शामिल हैं। अब तक भाजपा ने 70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा के लिए 29 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन का 57वां वार्षिक सम्मेलन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में शुरू हुआ। इस सम्मेलन में देश भर से 400 से अधिक जल विशेषज्ञ इंजीनियर भाग ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। 3 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन 12 जनवरी तक चलेगा। इस सम्मेलन का विषय जल 360 डिग्री है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के दौरे के अंतर्गत आज दुर्ग जिले में आयोजित मोर मकान मोर अधिकार कार्यक्रम और किसान मेले में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनहित में प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता के मानदंडों में 3 महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।
3 बड़े परिवर्तन संशोधन हमने और किए हैं आपकी मांग पर। अब 2 पहिया वाहन होंगे तो भी उनको मकान मिलेगा, पात्रता की सूची में नाम जुड़ेगा। इसके साथ अब 15,000 तक की भी आमदनी अगर हर महीना होगी तो उनको भी मकान दिए जाएंगे, सूची में नाम जोड़ा जाएगा। और हमारे किसान भाई बहन, छोटे किसान जिनके पास 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है, उनके नाम भी आवास की सूची में जोड़े जाएंगे।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नागरिकों को संसदीय लोकतंत्र को समझने के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने आज नई दिल्ली में केंद्रीय विद्यालयों के वर्ष 2023-24 की 34वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता को संबोधित करते हुए ये सलाह दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIYANewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। और अब समय है महाकुंभ की विशेष खबरों का। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी का कुंभवाणी चैनल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महाकुंभ जाति पंथ और भेदभाव से परे है और महाकुंभ एकता का संदेश फैलाता है। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कुंभ मंगल धुन का भी शुभारंभ किया गया। कुंभवाणी को 103.5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी न्यूज ऑन AIR ऐप और वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर सुना जा सकता है। भजन गायक अनूप जलोटा ने प्रसार भारती द्वारा आकाशवाणी के FM रेडियो चैनल कुंभवाणी की शुरुआत की सराहना की। प्रयागराज में आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए श्री जलोटा ने कहा कि महाकुंभ 2025 का ये पावन अवसर 144 वर्षों के बाद आया है और FM चैनल बहुत अच्छी पहल है।
कुंभवाणी एक इतना सुंदर नाम है क्योंकि 144 साल के बाद ये कुंभ आया है, लोगों के अंदर कितना उत्साह है। तो कुंभवाणी बहुत सुंदर टाइटल है और मैं चाहूंगा कि इसके लिए मैं कभी रिकॉर्डिंग्स करूं। मैं दिल्ली विशेष आऊंगा आपके लिए और कुछ रिकॉर्डिंग करूंगा।
महाकुंभ 2025 एक धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन के साथ ही संरक्षण तथा स्वच्छता का भी उदाहरण है। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत महाकुंभ मेला क्षेत्र के लिए 152 करोड़ रुपए की लागत से विशेष स्वच्छता प्रबंधन उपाय किए गए हैं। मेला क्षेत्र में 28,000 से अधिक शौचालय बनाए गए हैं, जिसमें 12,000 फाइबर के और 16,000 प्री फैब्रिकेटेड स्टील के हैं। ये शौचालय पर्यावरण अनुकूल हैं और इनसे स्वच्छता भी सुनिश्चित होगी। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए 20,000 यूरिनल भी लगाए गए हैं। वहीं मेला क्षेत्र में कचरे के प्रभावी प्रबंधन के लिए 20,000 कचरा डिब्बे लगाए गए हैं, जो स्रोत पर ही कचरे को अलग करने में मदद करेंगे। कचरा संग्रहण और निष्पादन को अधिक सुचारू बनाने के लिए लगभग 38 लाख लाइनर बैग की भी व्यवस्था की गई है। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और प्रेरणा से प्रयागराज में महाकुंभ 2025 शाश्वत गौरव का प्रतीक होगा। महिला क्रिकेट में भारत ने 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में आज राजकोट में आयरलैंड को 6 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 238 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने यह मैच 34 ओवर और 3 गेंदों में 4 विकेट खोकर 241 रन बनाकर जीत लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी योजनाओं के 100% कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया। इसे वास्तविक सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का आधार बताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए भारतवंशियों के विशिष्ट सदस्यों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार मजबूत रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए परिवर्तनकारी नीतिगत सुधार कर रही है। भारत का औद्योगिक उत्पादन नवंबर में 6 महीने के उच्चतम स्तर 5.2% पर पहुंचा। अक्टूबर में ये 3.5% था। दिल्ली में चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ ही 70 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। और महिला क्रिकेट में भारत ने राजकोट में 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में आयरलैंड को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।